डॉक्टर रॉबर्ट यारब्रो, पास्टोरल एपिस्टल्स, सत्र 4, 1 तीमुथियुस 3, 2024, रॉबर्ट यारब्रो और टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर रॉबर्ट डब्ल्यू यारब्रो, देहाती धर्मपत्रों, देहाती नेताओं और उनके अनुयायियों के लिए प्रेरितिक निर्देश पर अपने शिक्षण में है। सत्र 4, 1 तीमुथी 3। हम 1 तीमुथियुस को देखते हुए देहाती पत्रों का अपना अध्ययन जारी रखते हैं और हम 1 तीमुथियुस 3 को देखने जा रहे हैं और ये देहाती नेताओं और अनुयायियों के लिए भी प्रेरितिक निर्देश हैं। और जब हम 1 तीमुथियुस 3 पर पहुंचते हैं तो हम उन पदनामों के बीच में होते हैं क्योंकि हम एक पादरी नेता तीमुथियुस को प्रेरितिक निर्देशों के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन यह उन अनुयायियों को प्रभावित कर रहा है जो नेता बनना चाहते हैं। क्योंकि हम 1 तीमुथियुस 3 की शुरुआत में पढ़ते हैं, यहाँ एक भरोसेमंद कहावत है और मैं NIV पढ़ रहा हूँ और मेरे पास संदर्भ के रूप में दाईं ओर नया अमेरिकी मानक है, क्योंकि अनुवाद करने के विभिन्न तरीके हैं, इनमें से कुछ शब्द जिनका हम सामना करने जा रहे हैं और मैं संदर्भ के लिए बस एक वैकल्पिक अनुवाद चाहता था। यहाँ एक भरोसेमंद कहावत है और मुझे लगता है कि यह तीसरी भरोसेमंद कहावत है जिसे हमने अब 1 तीमुथियुस में देखा है। जो कोई पर्यवेक्षक बनने की इच्छा रखता है वह एक महान कार्य की इच्छा रखता है, और मुझे लगता है कि ओवरसियर कॉन्ग्रेगेशन लीडर के लिए एक और शब्द है। नए नियम में शब्दों में एक तरलता है जो देहाती कार्य के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। वहाँ चरवाहा है, या तो क्रिया के रूप में या संज्ञा के रूप में, वहाँ पर्यवेक्षक है, वहाँ बुजुर्ग है और शायद एक या दो जिन्हें मैं भूल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर्यवेक्षक शब्द का उपयोग किया गया है। ग्रीक में शब्द एपिस्कोपोस है जिससे हमें एपिस्कोपल शब्द मिलता है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद बिशप के रूप में भी किया जाता है। वह किंग जेम्स ट्रांसलेशन था क्योंकि यह एक एंग्लिकन चर्च था और उनके पास बिशप थे और बिशप एपिस्कोपोस ओवरसियर से जुड़ा हुआ था, लेकिन यदि आप ग्रीक शब्दकोश को देखते हैं तो एपिस्कोपोस सिर्फ ओवरसियर होने वाला है, पहले नहीं सब बिशप। इसलिए हम इसे एक सामूहिक नेता के संदर्भ में लेंगे, जैसे कि हम एक पादरी कहते हैं। अब पर्यवेक्षक को निंदा से ऊपर रहना होगा। तो श्लोक 1 कहता है कि यह एक अच्छी बात है यदि कोई इस कलोस, इस सुंदर, इस अच्छे कार्य की आकांक्षा करता है, और अब वह ऐसे व्यक्ति के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है जो इस इच्छा को महसूस करता है। निंदा से ऊपर अपनी पत्नी के प्रति वफादार, और आप दाहिनी ओर देख सकते हैं कि न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड कहता है कि एक पत्नी का पति, और यह ग्रीक के लिए अधिक सच है जिसे लोग हमेशा कहते हैं, और यह सच है ग्रीक कहता है एक महिला पुरुष या एक महिला पति, और इस प्रकार एक पत्नी का पति एक अधिक सीधा अनुवाद है, लेकिन इसका क्या मतलब है? लोगों ने एक समय में एक पत्नी का सुझाव दिया है, बहुविवाह का नहीं। लोगों ने सुझाव दिया है, जैसा कि NIV करता है, कि इसका वास्तव में मतलब अपनी पत्नी के प्रति वफादार होना है। इसका मतलब एक पत्नी का पति नहीं है, जैसा कि कुछ लोगों ने यह मान लिया है कि यदि आपका कभी तलाक हुआ है तो आप पादरी नहीं हो सकते। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनका तलाक हो चुका है, मुझे यकीन है जिन्हें पादरी नहीं बनना चाहिए, लेकिन शायद यह पत्नी के पति को बहुत आगे तक बढ़ा रहा है, क्योंकि पॉल संबोधित नहीं कर रहे हैं उन पुरुषों के बारे में क्या जो तलाकशुदा हैं। वह सामान्य तौर पर एक ओवरसियर के लिए योग्यताएं दे रहा है, और इसलिए मुझे पसंद है कि NIV यहाँ अपनी पत्नी के प्रति वफादार होने की बात कह रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि पॉल एक पत्नी के पति से जो मतलब रखता है वह उस भावना की सही व्याख्या करता है। संयमी, याद रखें, पहले हमने ऐसे पुरुषों के बारे में सुना था जो स्वभाव के थे क्रोधी थे, ठीक है। अगर पुरुषों को पर्यवेक्षक बनना है तो उन्हें संयमी होने की जरूरत है, उन्हें आत्मनियंत्रित होने की जरूरत है। यह उसी दिशा में है, नियंत्रण से बाहर नहीं, नाराज लोग नहीं, बल्कि नियंत्रण में लो। आदरणीय, और आप पूछ सकते हैं कि आदरणीय किससे? खैर, मुझे लगता है कि लगभग हर कोई ऐसा ही होगा। कुछ लोग अपने व्यवहार में अजीब होते हैं, उनका आसपास रहना अच्छा नहीं लगता है, और इसके लिए सभी प्रकार के कारण हो सकते हैं, और पॉल का सिर्फ इतना कहना है, इस व्यक्ति को अपमानजनक प्रवृत्ति या व्यवहार से अपनी ओर ध्यान नहीं आकर्षित करना चाहिए। उसे मेहमानवास करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि यह उस चीज का संदर्भ है जो इन सभी ने विवाहित पुरुष की कल्पना की थी। एक विवाहित पुरुष की कल्पना की जाती है। मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब यह है कि एक अकेला आदमी पादरी नहीं हो सकता है, लेकिन ज्यादातर पुरुष बहुत लंबे समय तक पुरुष बने रहने के दौरान अगर उन्हें एक पत्नी मिल सकती है तो शायद उन्हें एक पत्नी मिल जाएगी। यदि वे ऐसा करते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। उनकी शादी में उनमें ये गुण होने चाहिए, वे सभी को दिखने चाहिए, उन्हें अपनी शादी में दिखना चाहिए। और शादी में आप जो चीजें करते हैं उनमें से एक है, आप एक साथ रहते हैं, खाते हैं और एक टेबल साझा करते हैं। तो आपके पास यहाँ पहुँच के लिए एक शानदार सुसमाचार स्थल है, क्योंकि आप लोगों को अपने परिवार में आमंत्रित कर सकते हैं, जो कि चर्च का एक सूक्ष्म रूप है। चूंकि यह एक घरेलू चर्च है, चर्च परिवारों का एक समूह है। जब परिवार अपने घरों में बिखर जाते हैं तब भी वे चर्च ही होते हैं, वे केवल एकत्रित चर्च नहीं होते हैं, लेकिन वे अभी भी मसीह के गवाह हैं। और एक विवाह दो लोग हैं, जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे हुए हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। हम जो कुछ भी करें वह यीशु के नाम पर होना चाहिए। इसलिए घर में एक ईसाई मेज, गवाही की मेज और संगति, समर्थन, प्रोत्साहन और पोषण के लिए अन्य ईसाइयों के स्वागत की मेज होनी चाहिए। लेकिन साथ ही दूसरों को भगवान का प्यार दिखाने और प्रचार करने के अवसर भी मिलते हैं। इसलिए यह उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपनी पत्नी के साथ मिलकर मेहमानवास व्यक्ति हो। मैं ऐसी पत्नियों को जानता हूँ जो मेहमानवास करना पसंद करेंगी, लेकिन उनके पति नहीं चाहते कि उनका खाना पीना बाधित हो, या वे सप्ताहांत में झील पर रहना चाहती हैं, या उनके पास अन्य चीजें हैं जो वे करना चाहती हैं। उनका घर ही उनका महल है, उनका घर मंत्रालय के लिए जगह नहीं है। इसलिए यदि यह आपकी प्रतिबद्धता है तो आपको पादरी नहीं बनना चाहिए। मैं ऐसे चर्चों के बारे में भी जानता हूं जो उतने गर्मजोशी से भरे नहीं हैं, क्योंकि पादरी और उनकी पत्नी के बीच आपस में अच्छी पट्टी नहीं है। जब आप चर्च में आते हैं तो आप लंबे समय तक वहां रह सकते हैं और न जाने क्यों, लेकिन वहां कोई स्वागत योग्य एहसास नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पादरी और उसकी पत्नी मेहमानवाज नहीं है, क्योंकि उनके बीच आपस में अच्छी बनती नहीं है। इसलिए चर्च आतिथ्य सत्कार योग्य नहीं है। यदि पादरी और उसकी पत्नी आपसी स्वीकृति और प्रतिज्ञान और कुछ हद तक खुले घर का मॉडल नहीं बनाते हैं जहां वे लोगों को आरामदायक महसूस करा सकें, और आतिथ्य सत्कार काम है, जो कोई इसे पकाता है वह काम करता है, और जो कोई इसे साफ करता है वह काम करता है। हमारे घर में मेरी पत्नी खाना बनाती है, वह इस काम में बहुत अच्छी है। मैं साफ सफाई करता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि जब हम मेहमानवाजी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मुझे तैयारी में शामिल होना होगा, क्योंकि कई बार वह कहेगी, क्या आप जाकर इसे ले आएंगे, या उसे यह पसंद है, कहो ठीक है हम इसे ठीक करने जा रहे हैं। फिर वह कहती है, और आप ग्रिल करेंगे है ना? वह आम तौर पर मुझसे सुखद तरीके से पूछती है, लेकिन मुझे पता है कि वह क्या कह रही है, आप ग्रिल करने जा रहे हैं। यह सब मेहमानवाज होने का हिस्सा है। यदि आप मेहमानवाज नहीं होना चाहते तो आपको मंत्रालय में नहीं रहना चाहिए। तो यह एक योग्यता है। निःसंदेह सिखाने में सक्षम होने का तात्पर्य यह है कि आप सीखने में सक्षम हैं, क्योंकि यदि आप नहीं सीखेंगे तो आप सिखा नहीं सकते। इसलिए मैंने पिछले व्याख्यान में उल्लेख किया था कि प्रारंभिक चर्च में महिलाओं का शिष्य होना कितना महत्वपूर्ण था और तीमुथियुस और पादरियों के लिए महिलाओं को शिष्यत्व के लिए समर्पित होने के लिए जगह और प्रोत्साहन देना कितना महत्वपूर्ण था। बहुत सी महिलाएं ओवरसियर के लिए योग्य होती हैं क्योंकि वे सीखने वाली होती हैं। बहुत से पुरुष कभी नहीं पढ़ते और कभी कभी उन्हें इस पर गर्व भी होता है। मैंने कॉलेज पास कर लिया है, मैंने पुरुषों को कहते सुना है और मैंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। खैर, यह सच हो सकता है, मैं इसके बारे में डींगे नहीं मारूंगा। और यदि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो बैठकर सीख नहीं सकते, तो आप शायद बहुत कुछ सिखाने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन सिखाने में सक्षम, नशे के आदि न हो, इसका मतलब यह नहीं है कि शराब पीकर शराब पिए। हालांकि शराब पीना ठीक है, लेकिन आपको ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहिए जो चर्चा से चर्चा में रहता है। कुछ लोगों के लिए यह एक अनुष्ठान की तरह है। कभी कभी यह वास्तव में अत्यधिक होता है, लेकिन कभी कभी यह अत्यधिक की सीमा पर होता है। वे बस दो तिहाई रोशनी नहीं, बल्कि शायद आठवीं रोशनी प्राप्त करना पसंद करते हैं। यदि आप नशे के आदी हैं, तो पॉल कहते हैं कि यह अच्छी योग्यता नहीं है। हिंसक नहीं लेकिन सौम्य, इसलिए न केवल हिंसक नहीं बल्कि निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका व्यवहार नकारात्मक है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास अवसर की आवश्यकता पड़ने पर पोषण करने वाली उपस्थिति हो। एक चीज जो मैं देखता हूं वह यह है कि एक उम्मीदवार या एक मंत्री बच्चों के संबंध में कैसा दिखता है। क्या वे बच्चों पर ध्यान देते हैं? क्या वे बच्चों के नाम जानते हैं? क्या बच्चे इस आदमी को पसंद करते हैं? क्योंकि आप बच्चों पर हिरन की तरह चिल्ला सकते हैं और उपद्रव कर सकते हैं, लेकिन इस संबंध में वे पालतू जानवरों की तरह हैं। कभी कभी पालतू जानवर जानते हैं कि आप उन्हें पसंद करते हैं या नहीं। कुत्ते एक व्यक्ति के लिए गुर्राएंगे, फिर वे किसी और का हाथ चाटेंगे, वह क्या है? खैर, वह कुत्ता जानता है कि उस व्यक्ति को कुत्ते पसंद हैं। कुछ बच्चे जानते हैं कि यह लड़का डरावना है, लेकिन कुछ पादरी हैं जो बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, बल्कि एक सज्जन व्यक्ति होना चाहिए। एक हिंसक आत्ममहत्वपूर्ण व्यक्ति शायद बच्चों पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो हिंसक नहीं है लेकिन सौम्य है। फिर इन कुछ अन्य योग्यताओं के साथ आगे बढ़े, इस बात की अच्छी संभावना है कि वह बच्चों पर नजर रखेगा और बच्चों की देखभाल करेगा, और विशेष रूप से यह महसूस करेगा कि प्रत्येक चर्च का भविष्य उसके बच्चों में निहित है। और साथ ही महिलाओं के शिष्य होने की ओर लौटते हुए, शिष्यत्व एक स्वैच्छिक गतिविधि है और लोगों को आपसे सीखना होगा। मैं इसे महिलाओं की सद्भावना कहता हूं। यदि किसी पादरी के पास चर्च की महिलाओं की सद्भावना नहीं है, तो उसका मंत्रालय बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। महिलाओं को यह समझना होगा कि यह आदमी हमारी शिष्यत्व आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरा कर रहा है। और सौम्य होने की ओर वापस लौटने के लिए महिलाएं नोटिस करती हैं कि क्या आप उनके बच्चों की देखभाल करते हैं। पुरुष भी करते हैं, लेकिन कम पुरुष इस पर ध्यान देंगे या परवाह करेंगे। लेकिन किसी भी बच्चे वाली महिला को बहुत खुशी होगी अगर वह बच्चा पादरी के साथ दोस्ती विकसित कर ले, लेकिन आम तौर पर यह पादरी की पहल पर होना चाहिए। उसे एक सज्जन व्यक्ति बनना होगा जो बच्चे के पास तेजी से नहीं आता है और बच्चे को डराता नहीं है, बल्कि नीचे उतरता है और बच्चे को देखता है, बच्चे का नाम जानता है, बच्चे के लिए प्रार्थना करता है और बच्चे के साथ संबंध विकसित करता है। तो यह व्यक्ति एक सज्जन व्यक्ति है, झगड़ालू नहीं है, फिर क्रोध करने वाला है, धन का प्रेमी नहीं है। अब यह बहुत से लोगों को हटा देता है, लेकिन यह एक योग्यता है। फिर स्पष्ट रूप से घरेलू पक्ष की ओर, पद चार, उसे अपने परिवार को अच्छी तरह से प्रबंधित करने की आवश्यकता है, और आप पॉल के लेखन में महिला के घरेलू प्रबंधक होने, जो कि वह है, और पति के घरेलू प्रबंधक होने, जो कि वह है, के बीच एक उतार चढ़ाव देखते हैं। तो वहाँ एक प्रकार की पारस्परिकता है, वहाँ फिर से श्रम का विभाजन है, जिसने संबंधपरक तालमेल का आदेश दिया है। उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वे परिवार की निगरानी की जिम्मेदारी साझा करते हैं, जैसे कि पादरी सिखाता है और अधिकार का प्रयोग करता है, और चर्च मंडली परिवारों की देखरेख करता है। पिता, जो एक पर्यवेक्षक बनने जा रहा है, को यह दिखाना होगा कि उसके पास कई परिवारों को प्रबंधित करने का मौका है, क्योंकि वह अपने परिवार को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है। उसके बच्चे उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, या जैसा कि नया अमेरिकी मानक कहता है, अपने बच्चों को पूरी गरिमा के साथ नियंत्रण में रखता है। एनआईवी का कहना है, पूर्ण सम्मान के योग्य तरीके से। बस इतना ही, यह भाषा सब आशुलिपि है, बहुत संक्षिप्त है। मैं एक मिनट में इसके बारे में और बताऊंगा। वह यहाँ क्या कह रहा है, यह देखने के लिए आपको एक पवित्र कल्पना की आवश्यकता है। आप बच्चों से इसका अनुपालन करा सकते हैं, और हो सकता है कि आप ऐसे परिवार में बड़े हुए हों जहां आपने अनुपालन किया हो और वह लगभग मृत्यु के दर्द पर था। यदि आपने ऐसा नहीं किया, और विशेषकर पिता अपने अनुशासन में बहुत हिंसक हो सकते हैं। वे अपने बच्चों, जो बहुत लचीले होते हैं, और जब वे सार्वजनिक रूप से बाहर होते हैं, तो उनमें आतंक पैदा कर सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि सब कुछ वास्तव में ठीक है, लेकिन घर में यह बहुत अंधेरा है, और यह बहुत क्रूर है। यह उस प्रकार की अधीनता नहीं है जिसके बारे में पॉल बात कर रहा है। वह यह नहीं कह रहा है, आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो अकेले में अपने बच्चों को पीटता हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से यह सम्मानजनक लगता है। वह पालन पोषण की एक ऐसी शैली के बारे में बात कर रहे हैं जो बच्चों को एक ऐसे रिश्ते में ले जाती है जहां वे सीख रहे हैं और बढ़ रहे हैं, और वे वही करते हैं जो उन्हें बताया जाता है, क्योंकि वे बच्चे हैं। यह पूरे पुराने नियम में है। पूरे नए नियम में बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, लेकिन हम उन माता पिता की आज्ञा मानने के बारे में बात कर रहे हैं जो एक दूसरे के साथ अनुबंध में हैं, भगवान के साथ अनुबंध में हैं, और वे अपने बच्चों के साथ अनुबंध संबंधी संबंध विकसित कर रहे हैं। यह कठोर कठोर क्रूर अपमानजनक तरीकों से नहीं है, चाहे वह मनोवैज्ञानिक हो या शारीरिक। इसलिए जब वह कहते हैं पूर्ण सम्मान के योग्य तरीके से, आपने देखा होगा कि कुछ माता पिता अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं, और कुछ बच्चे बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि उनके माता पिता ए पर भगवान की कृपा थी, और बी भगवान द्वारा अपने बच्चों के पालन पोषण के रास्ते में नहीं आए। उन्होंने उस पालन पोषण को प्रोत्साहित किया, और वे अपने बच्चों से प्यार करते थे। उनके बच्चे अब वयस्क हो गए हैं, और वे अपने माता पिता को दिन का समय देते हैं, और वे अपने माता पिता की देखभाल करते हैं। एक अद्भुत रिश्ता है, आप इसे बचपन से ही विकसित होते हुए देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी दो या तीन साल के बच्चों में भी आप देख सकते हैं कि कोई रिश्ता है। माता पिता इसे सही कर रहे हैं। आप एक उम्मीदवार में यही देखना चाहते हैं, बच्चे सम्मान के योग्य तरीके से उसका पालन करते हैं। हम भारी भरकम रणनीति या सैन्य अनुशासन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो पोषण करती है और कुछ ऐसी चीज है जो मसीह की तरह है। वह हाल ही में धर्म परिवर्तन करने वाला नहीं होना चाहिए और नए धर्म परिवर्तन के साथ बहुत उत्साह हो सकता है। हम इसे सेलिब्रिटी जगत में देखते हैं। एक सेलिब्रिटी, एक एथलीट, एक अभिनेता ईसाई बन जाता है और उनका साक्षात्कार होता है और अचानक वे सुर्खियों में आ जाते हैं और वे ये अपमानजनक बातें कहते हैं क्योंकि वे नए ईसाई हैं। फिर सबसे बुरी बात यह है कि 2 या 3 वर्षों में शायद वे अब ईसाई नहीं रहेंगे। पॉल कहते हैं वे दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, वे घमंडी हो सकते हैं और शैतान के समान दंड के अधीन हो सकते हैं। न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड कहता है शैतान द्वारा की गई निंदा में पड़ सकते हैं। इसलिए हम नहीं जानते कि यह वह निर्णय है जो शैतान पर था या वह निर्णय जो शैतान किसी के जीवन में लाता है, लेकिन प्रभाव वही है। नए धर्मांतरित लोगों में विफलता की आशंका होती है, उनका परीक्षण नहीं किया जाता, उनका विकास नहीं किया जाता, उनमें कौशल की कमी होती है और उनके पास अनुभव की कमी होती है। उन्हें जरूरत है शायद प्रलोभन का विरोध करने की, और शायद आप कामुक प्रलोभन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मंत्रालय में सभी प्रकार के प्रलोभन हैं। एक बार मेरा एक दोस्त था जिसने अपनी मंडली में किसी के साथ हुई मारपीट के बारे में बात की थी। वह पादरी था और वह उस आदमी से मिलने गया और वह आदमी बाहर आया और वह बहुत अमित्र था। वे एक मौखिक झगड़े में पड़ गए और फिर यह आदमी आगे बढ़ा और मेरे दोस्त को धक्का दिया और फिर मेरे दोस्त को, जो एक बहुत अच्छा योद्धा था, और उसने इस आदमी की पिटाई कर दी। इससे उनका मंत्रालय खत्म नहीं हुआ, लेकिन शायद खत्म होना चाहिए था। वह मंत्रालय के लिए तैयार नहीं थे। वह कोई नया धर्मांतरित नहीं था, लेकिन वह एक नया मंत्री था, और यह भी उसे इस अगली कविता के साथ समस्याओं में डाल देगा। बाहरी लोगों के साथ उसकी अच्छी प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए ताकि वह बदनाम न हो और शैतान के जाल में न फंसे। आइए इसके बारे में कुछ टिप्पणियों के लिए रुकें और मुझे अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा विभाजित करने दें क्योंकि मुझे इसे देखने की जरूरत है। सबसे पहले यह तथ्य कि पॉल अध्याय 2 की पूजा से अध्याय 2 की पूजा के नेताओं, मंडली के नेताओं की ओर बढ़ता है, हमें याद दिलाता है कि तीमुथियुस की भूमिका, जैसा कि पॉल ने कल्पना की थी, में देहाती भर्ती और देहाती प्रशिक्षण शामिल होना चाहिए। और यह एक अनुस्मारक है कि पादरियों को हमेशा नए नेतृत्व, बेहतर नेतृत्व का पोषण करने की कोशिश करनी चाहिए। यह उन कारणों में से एक है जो इतना महत्वपूर्ण है कि पादरी सौम्य हो। हमने विनम्र शब्द नहीं देखा, लेकिन यह एक ऐसा शब्द होगा जो इनमें से कई योग्यताओं में निहित होगा। पादरी काफी क्षेत्रीय हो सकते हैं और अपने नेतृत्व और अपने क्षेत्र से काफी ईर्ष्यालु हो सकते हैं, और उन्हें यह नहीं पता होगा कि वे खर्च करने योग्य हैं। और जैसे जैसे चर्च का विस्तार होता है, आपको नए नेताओं की आवश्यकता होती है, या उन्हें यह ख्याल ही न आए कि परमेश्वर को उनके जीवन की आवश्यकता हो सकती है। कभी कभी वे जल्द ही मर सकते हैं या उन्हें कहीं और बुलाया जा सकता है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि पादरियों को हमेशा खुद को नौकरी से निकालने के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता होती है। हमारे इस सेमिनरी में वर्षों पहले एक सेमिनरी प्रोफेसर थे और वह काफी सफल थे। किसी ने पूछा, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? उन्होंने कहा, मैंने हमेशा अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को काम पर रखा है, और इसलिए उनका संगठन फलाफूला। और एक मंत्री के डायकोनिया का हिस्सा अन्य लोगों को बेहतर बनाना, अन्य लोगों को उनकी ईसाई कॉलिंग और ईसाई सेवा में बेहतर बनाना है। एक महान फिल्म है जिसने एक डॉक्यूमेंट्री जीती, मुझे लगता है, मुझे नहीं पता, 2014 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर या जो भी पुरस्कार दिया गया था, और इसे 20 फीट फ्रॉम स्टारडम कहा गया था। और यह बैकअप गायकों के बारे में था, और वे मुख्य रूप से अफ्रीकी अमेरिकी महिलाएं थीं जो चर्च में गाते हुए बड़ी हुई। लेकिन वे 1960 के दशक में मोटाउन गानों में बैकअप गायक बन गए और रोलिंग स्टोन्स के लिए गिम्मे शेल्टर नामक गाने पर मैरी क्लेटन नाम की एक महिला थी, वह आधी रात में बिस्तर से उठी, किसी आदमी ने उसे बुलाया, हम एक बैकअप गायक की जरूरत है। और उसने स्टूडियो में यही किया, वह एक स्टूडियो गायिका थी। और इन महिलाओं ने एक वर्ष से अधिक समय तक स्टिंग के लिए गाया और उन्होंने स्टोन्स के लिए गाया। उनमें से लगभग कोई भी एकल कलाकार के रूप में सफल नहीं हो सका। लेकिन उनकी विशेषता वह पृष्ठभूमि ध्वनि प्रदान करना थी कि यदि आपको रोलिंग स्टोन्स पसंद है और आप गिम्मे शेल्टर सुनते हैं तो मैरी क्लेटन का बैकअप गायक वह गाना बनाता है और इसका श्रेय मिक जैगर को जाता है। लेकिन यह मैरी क्लेटन ही हैं जो वास्तव में मसाला प्रदान करती हैं। और एक पादरी बहुत सारे युवा लोगों और युवा जोड़ों और जो लोग बाहर जाते हैं उनके जीवन को मसाला प्रदान करते हैं, वे भूल भी सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वे आमतौर पर ऐसा करते हैं, वे आमतौर पर इसकी सराहना करते हैं, लेकिन वे भूल सकते हैं कि क्या पादरी ने किया। और वे कभी नहीं जान पाएंगे कि पादरी ने कितनी प्रार्थना की और पर्दे के पीछे उसने कितनी सेवा की। लेकिन यह अंतर्निहित है, नेतृत्व के लिए योग्यताओं की ओर तुरंत मुड़ते समय तिमोथी को लोगों के प्रति एक नज़र और संवेदनशीलता की आवश्यकता थी जिसे वह महान बना सके, उनकी आकांक्षाओं की दिशा में प्रोत्साहित कर सके ताकि चर्च के पास वे नेता हों जिनकी उसे आवश्यकता है। भगवान का इकोनोमिया, भगवान का कार्य, भगवान की अर्थव्यवस्था। चर्च ईश्वर की व्यवस्था में ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। नरक के द्वार चर्च के विरुद्ध प्रबल नहीं होंगे, लेकिन एक सामान्य नियम के रूप में चर्च अपने नेताओं के स्तर से ऊपर नहीं उठते हैं। और यदि आपके पास स्वार्थी नेता हैं या ऐसे नेता हैं जो अपना काम नहीं कर रहे हैं तो वे नेतृत्व विकसित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे चीजों को चलाना चाहते हैं, वे प्रतिस्पर्धा नहीं चाहते हैं या वे काम करना पसंद नहीं करते हैं। यह विकसित करने का काम है नेता। जब आपके बच्चे होते हैं तो आम तौर पर आप उनकी मदद के बिना चार गुना तेजी से काम कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने बच्चों का उपयोग करना होगा, उन्हें काम करने में मदद करनी होगी, संयुक्त रूप से काम करना होगा। ए, वे सीखते हैं। बी, आप संगति सीखते हैं। सी, वे सीखते हैं। चीजें अपने आप करें, आप उन्हें विकसित कर रहे हैं, भावी वयस्क। तो यह वास्तव में तीमुथियुस की एक खूबसूरत तस्वीर है, न केवल अंदर जाकर अधिकार जमाना और संरचनाएं स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना कि लोग इसका अनुपालन करें, बल्कि उन लोगों को प्रोत्साहित करना भी है जो चर्च में शिक्षक और पर्यवेक्षक चरवाहा बनने की इच्छा रखते हैं। गिरजाघर। एक तीमुथियुस 3 में जो गुण हम देखते हैं वे व्यापक नहीं हैं। यह एक साफ सुथरा पैकेज नहीं है जो पूर्ण है, यह प्रतिनिधि है। और अक्सर आप शायद चर्चों में रहे हैं, मैं चर्चों में रहा हूं जहां आप या तो लोगों का मूल्यांकन कर रहे हैं। मैं था डीकन बोर्डों पर और हमने लोगों का मूल्यांकन किया और मेरा मूल्यांकन लोगों द्वारा किया गया है। उस मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। कोई भी इन सभी योग्यताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकता है और ऐसी अन्य योग्यताएं भी हैं जिनका उल्लेख नहीं किया गया है, जैसे जुआ या अश्लील साहित्य। ऐसी चीजें हैं जिनका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन हम इस प्रतिनिधि तस्वीर से अनुमान लगा सकते हैं जो हमें मिलती है, कुछ ऐसा जो सूचीबद्ध नहीं है लेकिन व्यक्ति के जीवन में मौजूद है और अभी के लिए यह उन्हें अयोग्य ठहराता है। या ऐसी अन्य चीजें भी हो सकती हैं जो सकारात्मक हैं, जो सूचीबद्ध नहीं हैं, जिन्हें हम पहचान सकते हैं, जो उन्हें और अधिक योग्य बनाएगी, इसलिए इसका उपयोग न करें। जैसा कि मैं इस अगले कथन में कहता हूं, एक पंच सूची के रूप में मुझे लगता है कि इन सभी गुणों के बारे में अनुबंध के अनुसार ईश्वर के साथ संबंध के बारे में सोचा जाना चाहिए, जिसके बारे में हम पहले ही इन व्याख्यानों में बात कर चुके हैं। इन गुणों को पवित्रता की अभिव्यक्ति के रूप में सोचा जाना चाहिए, और मैं परिभाषित कर रहा हूं कि ईश्वर के साथ चलने के रूप में ईश्वर पवित्र है, और उसके साथ संगति में चलने के लिए हमें मसीह के सुसमाचार को हमें बदलने और हमें पवित्र बनाने की अनुमति देने की आवश्यकता है। और उसके साथ चलने में हम एक करीबी और आज्ञाकारी और फलदायी रिश्ता बना सकते हैं। यह करीब है, यह वास्तविक है, यह आज्ञाकारी है, हम प्रभु के अधीन हैं, और यह फलदायी है। यह भगवान के लिए एक फलदायी जीवन है। यह मसीह यीशु में विश्वास के माध्यम से है, जो पवित्र है और जो अपनी पवित्र आत्मा देता है। तो ये एक अच्छे रियल एस्टेट सेल्समैन के लिए योग्यताएं नहीं हैं। एक अच्छा रियल एस्टेट सेल्समैन बनना बहुत अच्छी बात है, और बहुत सी चीजें हैं। आपको एक व्यक्ति बनना होगा और एक मल्टीटास्कर होना होगा और क्षेत्र को जानना होगा और संख्याओं में अच्छा होना होगा। मुझे नहीं पता कि सारी योग्यताएं क्या होंगी, लेकिन ये न्यायसंगत नहीं है। ये न्यायसंगत गुणात्मक या सिर्फ मात्रात्मक चीजें नहीं हैं। ये ऐसी विशेषताएं हैं जो अक्सर तब देखी जा सकती हैं जब किसी व्यक्ति को सुसमाचार प्राप्त हुआ हो और वह सुसमाचार में बढ़ रहा हो, और वे उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां भगवान उन्हें बाहर खींचते हैं और उन्हें सामूहिक नेतृत्व में सेवा का जीवन जीने की आकांक्षा देते हैं। ये औपचारिकताएं नहीं हैं, ये कोई पंच सूची नहीं है, बल्कि एक समग्र रेखाचित्र है। तो चलिए अब योग्यताओं के बारे में बात करते हैं। ओवरसियरों के लिए नहीं, बल्कि ओवरसियरों के विंगमैन के लिए। आपके पास एक पायलट है, और फिर आपके पास पायलट के बगल में विमान उड़ाने वाला कोई व्यक्ति है जिसे विंगमैन कहा जा सकता है, या दूसरा पायलट हो सकता है, जैसे सह पायलट को विंगमैन कहा जा सकता है। पादरी स्वयं को शब्द और प्रार्थना के मंत्रालय और सामूहिक निरीक्षण के लिए समर्पित करते हैं। मंडली में सेवा के बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है जो शब्द और प्रार्थना केंद्रित नहीं हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उपयाजकों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए या प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ श्रम विभाजन और फोकस के बारे में बात कर रहा हूं। आपके पास उपयाजक हैं और उन्हें सम्मान के योग्य होना चाहिए। इसे पद 8 के पहले शब्दों की तरह नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह कई मामलों में पर्यवेक्षकों और उपयाजकों के बीच घनिष्ठ समानता को दर्शाता है। वे दोनों उच्च योग्यता रखते हैं। मुझे लगता है कि इसका तात्पर्य यह है कि वे दोनों ईश्वर का बुलावा महसूस करते हैं। चर्च में इसकी आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि लोग समझ सकते हैं कि मुझे इस मंत्रालय के अवसर के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। डीकन को सम्मान के योग्य होना चाहिए। ईमानदार, क्या आप कभी किसी निष्ठाहीन चर्च जाने वाले व्यक्ति से मिले हैं? शायद एक व्यक्ति जिसका चर्च कार्यालय भी हो, लेकिन आपको उसका गोल्फ पार्टनर या कुछ और बनना होगा, या आप उनके साथ मछली पकड़ने जाते हैं और आपको पता चलता है कि यह व्यक्ति वास्तव में उतना धार्मिक या उतना आध्यात्मिक या उतना ईश्वरीय नहीं है। उन्हें चर्च का चेहरा मिल गया है, लेकिन वह असली व्यक्ति नहीं है। पॉल कह रहे हैं कि इस काम के लिए लोगों को वैसा ही होना चाहिए जैसा वे बिंदु बी पर हैं और वैसा ही जैसा वे बिंदु ए पर हैं। उन्हें सुसंगत ईसाई होने की आवश्यकता है। यह उनके जीवन में एक वास्तविक चीज होनी चाहिए। ईश्वर हमारे लिए 24 घंटे वास्तविक है। इसका वहां होना जरूरी है। फिर शराब से कुछ लेना देना है। ज्यादा शराब का सेवन नहीं करना। मुझे लगता है कि किंग जेम्स ने कहा था, वाइन बीबर नहीं। इसलिए यदि यह वह शब्द है जिसे आप पसंद करते हैं तो उसका उपयोग करें। बेईमानी से लाभ का पीछा नहीं करना। यह कहने का एक और तरीका है कि पैसे के प्यार से मुक्त हो जाओ। उन्हें स्पष्ट विवेक के साथ आस्था की गहरी सच्चाइयों को पकड़कर रखना चाहिए। उन्हें ऐसे शिष्य बनने की जरूरत है जो चर्च की सैद्धांतिक शिक्षा को परिष्कृत स्तर पर समझते हों। सबसे पहले उनका परीक्षण होना चाहिए। कभी कभी स्वयंसेवकों को प्राप्त करना आसान होता है और फिर सोचते हैं, ठीक है, हम आगे बढ़ते हुए उन्हें प्रशिक्षित करेंगे। लेकिन चर्च में आध्यात्मिक सेवा के लिए ऐसे लोगों को नियुक्त करना एक गलती है जो सक्षमता के स्तर और विश्वास के गहरे सत्य की समझ के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं और जो उन्हें नहीं जी रहे हैं। उनका विवेक साफ है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे पाप रहित हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब वे पाप करते हैं तो वे भगवान की आज्ञाकारिता और पश्चाताप के चक्र में जी रहे होते हैं। और उनका परीक्षण किया गया। यह हमें तय करना है कि हम उनका परीक्षण कैसे करते हैं। फिर यदि उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं है तो उन्हें उपयाजकों के रूप में सेवा करने दो। अब हमारे पास उसी तरह एक और है और यह बहुत विवादास्पद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये महिला उपयाजक होंगी। कुछ लोग कहते हैं कि यह उपयाजकों की पत्नियां होंगी। और मैं कहूंगा कि यह डीकन और ओवरसियर दोनों की पत्नियों के बारे में सच है। मुझे लगता है कि यह लगभग तय है, लेकिन मुझे लगता है कि वह डीकनों के साथ इसे स्पष्ट करता है क्योंकि उसे एहसास होता है, जैसा कि उसने ओवरसियरों और डीकनों के बारे में बात की है, इस तस्वीर में पत्नियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। और मुझे कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिख रहा है कि पॉल महिलाओं को डीकन बनने के लिए नियुक्त कर रहा है। अब मैं इसे आप और आपके चर्च, उसके चर्च के आदेश पर छोड़ दूंगा। बहुत से चर्चों में महिला उपयाजक हैं और निश्चित रूप से हमारे पास ऐसी महिलाएं होनी चाहिए जो उपयाजक का कार्य करें। और इसलिए कभी कभी यह अधिक औपचारिकता होती है और लोग महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में बयान देने की इतनी कोशिश नहीं करते हैं। वे सिर्फ यह कह रहे हैं कि हमें चर्च में डायकोनल सेवा करने में महिलाओं के मूल्य को पहचानने की जरूरत है। मैं उस तर्क को समझता हूँ। मैं उस तर्क का सम्मान करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है, मेरी समझ से, यह महिला उपयाजकों के बारे में बात नहीं कर रहा है। यह उपयाजकों की पत्नियों और निहितार्थ से पर्यवेक्षकों की पत्नियों के बारे में बात कर रहा है। उन्हें आदर के योग्य होना चाहिए, द्वेषपूर्ण बातें करने वाला नहीं, बल्कि हर बात में संयमी और भरोसेमंद होना चाहिए। उनमें वही उत्कृष्ट गुण होने चाहिए जैसे उनके पतियों में इन योग्यताओं के लिए रखे गए हैं। तो ठोस ईसाई लड़का, ठोस ईसाई महिला। डीकन की बात करें तो एक डीकन को अपनी पत्नी के प्रति वफादार होना चाहिए और अपने बच्चों और अपने घर को अच्छी तरह से प्रबंधित करना चाहिए। जिन लोगों ने अच्छी तरह से सेवा की है उन्हें मसीह यीशु में अपने विश्वास में एक उत्कृष्ट समझ और महान आश्वासन प्राप्त होता है। अब मुझे लगता है कि दिव्यता का यही एकमात्र संदर्भ है। खैर, 3.5 में भगवान का चर्च है और अब हमारे यहाँ ईसा मसीह हैं। लेकिन क्या यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह सब भगवान के चर्च के ये पर्यवेक्षक, ये सभी योग्यताएं, ये सभी भूमिकाएं, यह सब मसीह में और मसीह के लिए और मसीह के माध्यम से हैं? तो इस सब के साथ एक धार्मिक संबंध है कि फिर से हम उन्हें रटी हुई योग्यता के रूप में नहीं मानना चाहते हैं, जैसा कि मैंने अभी रियल एस्टेट सेल्समैन के बारे में बात की थी। अब आरंभिक चर्च मंत्रालय ने प्रेरितों और फिर पादरियों और फिर शब्द के सेवकों को बुलाया, साथ ही उन लोगों को भी बुलाया जो चर्च के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक देखभाल पर अधिक ध्यान केंद्रित करते थे, ताकि प्रेरित और पादरी और शब्द के सेवक अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र रहें। हालांकि अधिनियम अध्याय 6 में डीकन शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, चर्च में अधिनियम अध्याय 6 में नियुक्त लोगों को उन विधवाओं को भोजन परोसने के लिए देखने की काफी प्राचीन परंपरा है जो या तो हिब्रू भाषी या अरामी भाषी या ग्रीक भाषी थीं। चर्च में विवाद था क्योंकि चर्च की सामाजिक पहुंच थी, उसमें समस्याएं थीं, उसमें पक्षपात था और इसलिए प्रेरित फंस रहे थे। वे यरूशलेम में पादरी थे, वे इन साजो सामान में फंस रहे थे, लोगों को तरह तरह की चीजें खिला रहे थे। मेजों पर प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने इसे बुलाया और मसीह ने लोगों के पैर धोए। इसलिए मेजों पर इंतजार करना प्रेरितों से ऊपर नहीं है, यह पादरियों से ऊपर नहीं है और हर पादरी शायद कभी कभी मेजों पर इंतजार करता होगा। लेकिन पादरी बनने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर वो काम करना होगा जिसके बारे में कोई भी सोच सकता है और जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। किसी बिंदु पर आपको अपना मुख्य कार्य करना होगा जो शब्द और प्रार्थना और लोगों की आपकी आध्यात्मिक देखभाल है। मैं इसे आत्माओं की देखभाल कहता हूँ। आपको आत्माओं की देखभाल करने की आवश्यकता है और चर्च के मंत्रालय में बहुत सारी तार्किक चीजें हैं जिनके लिए आपको दूसरे स्तर पर और अन्य प्रशिक्षण और अन्य कॉलिंग वाले सेवकों की आवश्यकता होती है और वह थे डीकन। डीकन का अर्थ है चर्च की देहाती देखभाल में सहायक भूमिका निभाने वाला सेवक और चर्च की देहाती देखभाल का नेतृत्व पादरी की शिक्षा और निगरानी द्वारा किया जाता है। तो आपके पास एक पादरी है और आपके पास एक उपयाजक है और मैं उन भूमिकाओं को नौकरशाही में नहीं रखना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि जो हम पॉल में पाते हैं वह हमें देहाती कार्यालय के बारे में बात करने के लिए उचित ठहराता है और उस मामले के लिए एक डेकोनल कार्यालय। यह एक पवित्र आह्वान है। आप किसी चीज के लिए अलग रखे गए हैं और इसे आपको महिमामंडित नहीं करना चाहिए या आपको ऊंचे स्थान पर नहीं रखना चाहिए। साथ ही आप एक विशेष जिम्मेदारी के अधीन हैं और मुझे लगता है आपसे एक विशेष सक्षमता का वादा किया गया है और इसीलिए ये विशेष योग्यताएं दी गई हैं। ओवरसियर या पादरी और डीकन को समान रूप से उच्च मानकों पर रखा जाता है, उसी तरह उस शब्द के साथ। श्लोक 8, पवित्रता के उच्च मानक, योग्यता के उच्च मानक, सिखाने में सक्षम, आस्था के ज्ञान का उच्च मानक। मैं आपके चर्च और आपके इलाके के बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि जब धर्मशास्त्र और पुस्तकों, लेखों और चर्चाओं की बात आती है तो पुरुषों को अध्ययनशील बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो इससे परिचित होने में मदद मिलती है। मंत्रालय, यदि आप मंत्रालय अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो सीखने के लिए बहुत कुछ है और बहुत सारे आदमी व्यस्त हैं। और जब स्कूल या कॉलेज में थे तब से बहुत से लोगों ने इतना कुछ नहीं सीखा होगा। जब बाइबल पढ़ाने या सिद्धांत सिखाने या सैद्धांतिक या नैतिक मुद्दों को समझने जैसी चीजों की बात आती है तो ये कौशल नहीं हो सकते हैं जो कुछ पुरुषों के पास हो सकते हैं, बहुत विकसित हुआ। लेकिन यहाँ एक कारण से उच्च मानक हैं। और यदि आप दो कार्यालयों को देखें तो कहें तो अंतर प्रतिबद्धता या शिष्यत्व उत्कृष्टता की तुलना में कॉलिंग का अधिक है। कुछ उपयाजक ऐसे हैं जो ज्ञान में बहुत उन्नत हैं और देहाती देखभाल में बहुत उन्नत हैं। उन्हें पादरी बनने के लिए ही नहीं बुलाया गया है और इसलिए हमें उपयाजकों को दूसरे या तीसरे दर्जे के पादरी या उपयाजकों की तरह नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, आप एक तरह से शराबी हो सकते हैं और एक उपयाजक बन सकते हैं। नहीं, डीकनों के मानक बहुत ऊंचे हैं। यह एक पवित्र कार्य है लेकिन यह मंडली निरीक्षण कार्य और निर्देश कार्य नहीं है जिसके लिए पादरी को बुलाया जाता है। साथ ही महिलाओं और पत्नियों को अपने पतियों के आध्यात्मिक चरित्र और क्षमता को प्रतिबिंबित करना चाहिए। उन्हें एक दूसरे की जरूरत है और वे एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। मैं प्रसिद्ध अमेरिकी पादरी आर. केंट ह्यूजेस की एक महान पुस्तक के बारे में सोचता हूँ। हो सकता है कि उन्होंने इसे अपनी पत्नी के साथ मिलकर भी लिखा हो, लेकिन इसे सक्सेस सिंड्रोम से मुक्ति मंत्रालय कहा गया था। और आर. केंट ह्यूजेस, जिन्होंने वैसे मेरे दोनों बच्चों को बपतिस्मा दिया, वह उस महान मंत्रालय की कहानी बताते हैं जिसे उन्होंने शुरू किया था और चर्च ने उसका समर्थन किया, और वह एक चर्च स्थापित करने जा रहा था और उसे अपने चर्च होम चर्च में बड़ी सफलता मिली। और वह इस चर्च को स्थापित करने के लिए बाहर गया और उसने इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और कुछ नहीं हुआ, और यह बहुत हतोत्साहित करने वाला था। और आखिरकार उसने हार मान ली। उसने निश्चय किया कि भगवान ने मुझे इसके लिए नहीं बुलाया है। और इसलिए वह घर आया और केंट ह्यूज, शायद मेरे आकार का आदमी है, बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटा भी नहीं, और उसकी पत्नी छोटी है बारबरा, और उसने बारबरा से कहा, मैंने इस बारे में सोचा है और मैं इसे छोड़ रहा हूं। और उसने स्पष्ट शब्दों में उससे कहा कि वह इसे नहीं छोड़ रहा है। और उसने उससे कहा, मुझे हम दोनों के लिथे यथेष्ट विश्वास है। और बेशक यह कुछ हद तक अन्यायपूर्ण था, लेकिन मुझे यकीन है कि यह बहुत सारी मजबूत भावनाओं के साथ भी था। वह समझदार थी, ठीक है, यह हार मानने का समय नहीं था। यह इंतजार करने, प्रार्थना करने और काम जारी रखने का समय था। और वे आगे बढ़े और चीजें विकसित हुईं। और केंट ह्यूज आज भी बुढ़ापे में बहुत प्रभावी मंत्री हैं। लेकिन यह इस बात का प्रतिनिधि है कि कैसे पति और पत्नियां परस्पर एक दूसरे को स्थिर करते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और साहचर्य और आनंद का समुद्र तट प्रदान करते हैं जिसकी आपको मंत्रालय में प्रभावी होने के लिए आवश्यकता होती है। यदि आप हमेशा बोझ तले दबे रहते हैं, या यदि यह आपकी 9 से 5 बजे की नौकरी की तरह है और फिर आपको यहाँ वास्तविक जीवन मिलता है, तो आप मंत्री नहीं बन सकते। एक मंत्री, यह आपकी पहचान है, लेकिन एक पति और एक पत्नी के रूप में आपकी भी एक पहचान है, और हो सकती है यह एक मरुद्यान है। यह बड़ी दुनिया के तूफान से एक अभयारण्य है जिसमें आप दोनों को सेवा करने के लिए बुलाया गया है। और इसलिए वह चरित्र और पत्नियों को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास है कि पत्नियां और पति कितने सहजीवी हैं। चाहे पति एक उपयाजक हो या चाहे पति एक पादरी हो, वह एक ऐसी पत्नी के बिना बहुत आगे नहीं बढ़ सकता जो पुष्टि करने वाली हो, और एक ऐसी पत्नी भी हो जो उसके दैनिक जीवन में उसकी मदद करती हो, उसे वैसे ही प्यार करती हो जैसे मसीह चर्च को प्यार करता है। सूक्ष्म जगत, पादरी की सज्जनता और करुणा तथा दूसरों की देखभाल को बढ़ावा देना उसकी पत्नी के साथ एक स्वस्थ संबंध है। और यदि आपका अपनी पत्नी के साथ संबंध खराब है, तो एक उपयाजक या पादरी के रूप में आपका ईसाई मंत्रालय वह फल नहीं देगा जो वह दे सकता है और देना चाहिए। उन्हें एक दूसरे की जरूरत है। अंततः परमेश्वर उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो मसीह के समान चर्च नेतृत्व का बोझ उठाते हैं। और यह शब्द है, मुझे लगता है कि यह अगले भाग में है। जिन लोगों ने अच्छी तरह से सेवा की है, वे मसीह यीशु में अपने विश्वास में एक उत्कृष्ट स्थिति और महान आश्वासन प्राप्त करते हैं। यह एक शानदार वादा है और हम इसे कम करके नहीं आंकना चाहते। अब हम अध्याय के अंत में आते हैं, पॉल के निर्देशों के कारण। वह यहाँ गहरी सांस लेता है जैसे मैं गहरी सांस ले रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि उसने कॉफी पी है, लेकिन मैं इस ठंडी कॉफी का बचा हुआ हिस्सा पीने जा रहा हूँ। जब मैंने शुरुआत की थी तब ठंड नहीं थी, लेकिन अब ठंड है, तो इसका मतलब है कि इस व्याख्यान के लिए मेरे पास लगभग समय नहीं है। पॉल कहते हैं, हालांकि मुझे आशा है कि मैं जल्द ही आपके पास आऊंगा। श्लोक 14 में मैं आपको ये निर्देश लिख रहा हूँ, इसीलिए मैं इसे प्रेरित निर्देश कह रहा हूँ, ताकि यदि मुझे देर हो तो तुम जान लो कि परमेश्वर के घर में लोगों को कैसा आचरण करना चाहिए जो जीवित परमेश्वर का चर्च है। अब आप स्क्रीन पर देखेंगे कि मेरे पास कुछ ब्रैकेट और अनुवाद हैं जो अलग अलग तरीकों से जाते हैं और व्याकरण आपकी मदद नहीं करता है। व्याकरण दो प्रकार से हो सकता है। NIV इसे इस दिशा में ले जाता है कि लोगों को कैसा आचरण करना चाहिए, लेकिन पाठ में कोई लोग नहीं हैं। यह सिर्फ इतना बताता है कि आचरण कैसे आवश्यक है। यह मध्य स्वर है, इसलिए यह स्वयं का आचरण हो सकता है, लेकिन यह एकवचन या बहुवचन हो सकता है। और मुझे लगता है कि वह कह रहा है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें तीमुथियुस को परमेश्वर के घर में कैसा व्यवहार करना चाहिए जो जीवित परमेश्वर का चर्च है। लेकिन NIV और अन्य अनुवाद इसे बहुवचन बनाते हैं। मैं ये बातें इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें पता चले कि लोगों को कैसा आचरण करना चाहिए। यह उस प्रकार की सुंदर अस्पष्टताओं में से एक है। चूंकि हम किसी को भी बाहर नहीं कर सकते, हमें कहना होगा कि यह दोनों हो सकते हैं। हो सकता है कि उसने इसे तीमुथियुस की खातिर लोगों की खातिर लिखा हो, या लोगों की खातिर तीमुथियुस के माध्यम से और इस दिशा में लोगों की सहायता करने के लिए उसे जो होना चाहिए और प्राप्त करना चाहिए। लेकिन जीवित परमेश्वर का यह चर्च क्या है? यह सत्य का स्तंभ और आधार है। यह सभी प्रश्नों से परे है, वह रहस्य जिससे सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है। वहां फिर से वह शब्द ईश्वरीयता है जो पॉल में अक्सर प्रकट नहीं होता है और केवल देहाती पत्रों यूसेबिया में दिखाई देता है। रहस्य वस्तुतः ईश्वरत्व का रहस्य ही कहता है, और वे उस शब्द को ईश्वरत्व का शब्द बनाते हैं। वे इसे उत्पत्ति के शब्द के रूप में समझते हैं, और इसलिए वे कहते हैं कि सच्ची भक्ति कहां से उत्पन्न होती है। इसकी उत्पत्ति यहीं होती है, लेकिन यह वास्तव में ईश्वरत्व का रहस्य मात्र है। यह वह रहस्य हो सकता है जो ईश्वरीयता का गठन करता है, लेकिन यहां वह रहस्य है। वह देह में प्रकट हुआ, आत्मा द्वारा प्रमाणित किया गया, स्वर्गदूतों द्वारा देखा गया, राष्ट्रों के बीच उसका प्रचार किया गया, दुनिया में उस पर विश्वास किया गया और उसे महिमा के साथ ऊपर उठाया गया। और आप देख सकते हैं कि यह रहस्य मसीह है। यह उसका व्यक्ति है और यह उसका काम है। अब मैं बस एक सेकंड में इन व्यक्तिगत शब्दों पर वापस आऊंगा, लेकिन आइए अपनी टिप्पणियों पर नजर डालें। पहला अवलोकन यह है कि आचरण सच्चे विश्वास की परीक्षा है। आचरण सच्चे विश्वास की परीक्षा है। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि लोगों को कैसा आचरण करना चाहिए। मुझे श्लोक को यहां तक लाने दीजिए और फिर अपनी टिप्पणियों पर। जाहिर है, चर्च एक ऐसी जगह है जहां लोग ईसा मसीह के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं, और पॉल चाहता है कि लोग यीशु के बारे में सच्चाई पर विश्वास करें, और वह हमें यहां यीशु के बारे में 6 सत्य बताने जा रहा है। लेकिन हमारे पास यीशु हैं या नहीं, इसकी परीक्षा इस बात से होती है कि हम कैसे जीते हैं। यीशु ने कहा, उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे, और यह मसीह में विश्वास का जीवन है। यह मसीह के प्रति प्रेम का जीवन है। इसका निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। दूसरे, हम देखते हैं कि चर्च दुनिया में ईश्वर के मुक्तिदायी शासन का आधार है। चर्च को सत्य का स्तंभ और नीम कहा जाता है। और यह दिलचस्प है कि इसे भगवान का घर कहा जाता है। यह भगवान का घर है। ईश्वर आत्मा है। ईश्वर सर्वोपरि है। वह इस दुनिया तक ही सीमित नहीं है, खासकर किसी भौगोलिक स्थान तक नहीं। लेकिन बाइबल का ईश्वर वह ईश्वर है जिसे इमैनुएल कहा जाता है, ईश्वर हमारे साथ है। और जैसे पुराने नियम के समय में और पुराने नियम की संस्थाओं के माध्यम से भगवान के पास अपने लोगों के साथ रहने के तरीके थे, वैसे ही दुनिया में भगवान की एक सभा है जो कई सभाओं, परिवारों और व्यक्तियों से बनी है। वह एकलेसिया, मंडली, जीवित परमेश्वर की सभा है। और वह चर्च सत्य का स्तंभ और नींव है। चर्च का सत्य पर एकाधिकार नहीं है। ईश्वर अपने लोगों के साथ संसार में मौजूद है। वह चर्च के माध्यम से विशेष रूप से मौजूद है। हमें चर्च के प्रति उच्च दृष्टिकोण रखना चाहिए। पॉल ने किया। और फिर भगवान का चर्च और भगवान का राज्य कैसे कार्य करते हैं, वे कैसे सफल होते हैं, जब कभी कभी ऐसा लगता है कि वे मर रहे हैं, यह मानवीय समझ से परे हैं। यह एक रहस्य है। लेकिन चर्च की सफलता की गारंटी उसके मुखिया, उसके भगवान, उसके उद्धारकर्ता की सफलता के रहस्य से होती है। और वह मसीह होगा। और उसका व्यक्तित्व और उसका कार्य ईश्वरीय आचरण की कुंजी और मूल है, जिसे बढ़ावा देने के लिए पॉल लिखता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन छह को देखें। ये वास्तव में ग्रीक में केवल कुछ शब्द हैं। मैं इन सबको एक ही स्थान पर रखने के लिए यहाँ कुछ रिक्त स्थान बना रहा हूँ। हम पॉल को यह कहते हुए देखते हैं, मैं जल्द ही आने वाला हूँ, मुझे उम्मीद है, लेकिन जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँच जाता, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ वैसे ही चले जैसे उसे चलने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप वैसे रहें जैसे आपको रहना चाहिए और चर्च को वैसे रहना चाहिए जैसा उसे रहना चाहिए। और यह संभवतः विपक्ष और भ्रम, अज्ञात भविष्य की अस्पष्टता में कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? यह एक रहस्य है, लेकिन यहाँ वह रहस्य है जहाँ से मैं जिस ईश्वरत्व का आह्वान कर रहा हूँ, वह सब यहीं से आता है। तो जैसे उसने यह कहकर आरंभ किया, मसीह हमारी आशा। वह श्लोक 14 में गहरी सांस लेते हुए यहाँ वापस आता है। वह एक मिनट में फिर से शुरू हो जाएगा, लेकिन वह सिर्फ उस रहस्य की नींव रखता है जो ईश्वरीयता पैदा करता है। अवतार ईसा मसीह देह में प्रकट हुए, जो ईश्वर की यहूदी समझ के साथ फिट नहीं बैठता। व्यवस्था विवरण 4 किसी पुरुष या महिला के आकार में भगवान की छवि बनाने से मना करता है। अब आरंभिक ईसाई किसी पुरुष या महिला के आकार में ईश्वर की छवि नहीं बना रहे थे, लेकिन उन्होंने इसे विस्तारित किया, और रब्बी आज भी इसका विस्तार यह साबित करने के लिए करते हैं कि ईसाई धर्म ईश्वर की कुछ असामान्य समझ है, क्योंकि यह ईश्वर को एक पुरुष के रूप में चित्रित करता है। नहीं, हम ईश्वर की कल्पना मनुष्य के रूप में नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि ईश्वर ने यीशु के रूप में देह धारण किया। वह अवतार थे, यह कोई छवि नहीं, सत्य है। वह देह में प्रकट हुआ। वह आत्मा द्वारा प्रमाणित था। और कुछ लोग सोचते हैं कि यह बपतिस्मा था जब पवित्र आत्मा कबूतर की तरह उतरा और आवाज आई, यह मेरा बेटा है। अन्य लोग सोचते हैं कि रोमियो 1:4 में मृतकों के पुनरुत्थान के द्वारा उसे परमेश्वर का पुत्र होने की शक्ति के साथ घोषित किया गया था। और मैं सोचता हूं कि वह वहां पवित्रता की भावना है, पवित्र आत्मा। उसे स्वर्गदूतों ने देखा था। यीशु के पुनरुत्थान की घोषणा करने में स्वर्गदूतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस मामले के लिए उन्होंने ल्यूक 2 में जन्म के दृश्य में मसीहा के आने की घोषणा की, स्वर्गदूत वहां थे। राष्ट्रों के बीच उसका प्रचार किया गया। राष्ट्र एक अच्छा अनुवाद है, लेकिन यहूदी कानों के लिए यह अन्य जाति होगा। जाओ और सभी जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ। ग्रीक में यह शब्द एक प्रकार का कठिन शब्द है, जातीयता। उनका प्रचार न केवल इब्राहिम लोगों को किया गया, बल्कि रोमन दुनिया में हर जगह उनका प्रचार किया गया। उसका प्रचार इफिसुस में हुआ था। दुनिया में उन पर विश्वास किया गया, न केवल उपदेश दिया गया, बल्कि लोगों को संदेश मिला और वे परिवर्तित हो गए और उन्हें एक चर्च बना दिया गया। और वह महिमा के साथ ऊपर उठाया गया। वह स्वर्ग में चढ़ गया और वह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। तो यह एक हलचल है, और अगर हमारे पास ग्रीक में शब्द होते, अगर आपने ग्रीक सीखा होता, तो आप देखेंगे कि वे सभी सिद्धांतवादी निष्क्रिय क्रियाएं हैं। ईसा मसीह की इस प्रशंसा में एक सुंदर समरूपता और एक सुंदर कलात्मकता है। इतना कि आधुनिक यूनानी ग्रंथों के कुछ संपादकों ने इसे एक भजन या कविता जैसा बना दिया है। और मेरे पास यह सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है कि यह एक भजन या कविता है, और उनके पास भी नहीं है। मुझे बस यही लगता है कि पॉल पवित्र आत्मा से प्रभावित हुआ था और उसे सचमुच उपहार दिया गया था, और वह सिर्फ छह चीजों को बाहर फेंकता है जिसके परिणामस्वरूप यूसेबिया ईश्वरीयता सभाओं में प्रकट होती है, पत्नियों के माध्यम से, पतियों के माध्यम से, उपयाजकों के माध्यम से, पर्यवेक्षकों के माध्यम से, उन लोगों के माध्यम से जो उपयाजक और देखरेख करते हैं। यह हमारे जैसे गंदे लोगों को साफ किए जाने, उद्देश्यपूर्ण जीवन में बुलाए जाने की अद्भुत तस्वीर है। मैं आपके देश के बारे में नहीं जानता, लेकिन हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में नशीली दवाओं के अत्यधिक सेवन से प्रति वर्ष 1,00,000 से अधिक लोग मर रहे हैं। हमारे यहाँ आत्महत्याएं होती हैं। बहुत उच्च स्तर का अवसाद और मानसिक बीमारी। लोग जवान और जवान होते जा रहे हैं। जीवन में उद्देश्य की कोई समझ नहीं, कोई उम्मीद नहीं। दुनिया भर में मानव जाति संकट में है, और मसीह आता है और उसके कार्य करने के रहस्य के कारण उसे रोका नहीं जा सकता। और वह विवाहों में, व्यक्तिगत जीवन में, परिवारों में, सभाओं में, दुनिया भर में प्रचार प्रसार में शानदार काम कर रहा है। ऐसा करने के लिए चर्च को ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो सेवक हों। यह और अध्याय 3 उन पुरुषों और उनकी पत्नियों की नियुक्ति के लिए नींव रखने का एक बड़ा काम करते हैं। धन्यवाद। यह डॉक्टर रॉबर्ट डब्ल्यू यारब्रो, देहाती धर्मपत्रों, देहाती नेताओं और उनके अनुयायियों के लिए प्रेरितिक निर्देश पर अपने शिक्षण में है। 17:4, 1 तिमोथी 3।